انہوں نے میرے کو دیکھ لیا ہے. تو بکا سور جو ہے دوڑتا ہوا آیا, تو وہ دوڑتا ہوا جب آیا تو واسطے میں اس نے آتے ہی کرشن کے اوپر آکرمن کر دیا, کیونکہ بھیجا گیا تھا وہ اسی پرپس کے لیے, اسی کارن کے لیے کہ وہ کرشن کو جو ہے کھا جائے. تو کرشن کو اس نے لیا, ایک دم نگل لیا اپنے گلے میں, کھا لیا. تو یہ سب جو ہے جب بلرام جی اور باقی سخاؤں نے دیکھا تو وہ مورچھت ہو گئے. ویسے بلرام جی باقی لیلاؤں میں جو ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ یہ کرشن جو ہے ان کے اوپر کوئی پربھاؤ نہیں پڑتا, یہ راکشس کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو میرے کرشن کی لیلا ہے, میرے بھائی کی لیلا ہے. تو لیکن اس وقت جو ہے واسطو میں ان کے اوپر بھی لیلا شکتی کا پربھاؤ تھا, یوگ مایا کا پربھاؤ تھا, تو وہ بھی چنتت ہو گئے کہ ارے کرشن کو کیسے کھا گئے یہ. تو یہ سب جو ہے جیسے انہوں نے دیکھا تو سب کے سب مورچھت ہو گئے تھے. تو لیکن کرشن جب اسے گلے میں گئے تو اس کے گلے میں لگا مانو کچھ پھنس گیا, اتنا گرم لگا اسے کہ اس نے اگل دیا کرشن کو, اگل دیا اس نے. جب باہر نکالا اس نے کہا کہ یہ بہت شکتیشالی ہے, یہ تو کوئی لڑکا ہے سادھارن نہیں ہے, جس کو میں نے چبا لیا اس کو میں باہر آ گیا, جو میرے چبانے کے بعد میرے کھانے کے بعد, یعنی وہ تو کوئی, یہ بہت شکتیشالی ہے, اس کو پہلے جو ہے کمزور کرنا پڑے گا چونچ مار مار کے. تو اس نے جو ہے چونچ مارنا شروع کیا بھگوان کو کہ یہاں چونچ مارے وہاں چونچ مارنے کا پریاس کر رہا تھا لیکن مار نہیں پا رہا تھا وہ. تو اس کے بعد بھگوان نے دیکھا کہ جو ہے کافی سمے ہو گیا اس کے ساتھ کھیل کھیلتے ہوئے, ماما جی کے اس کھلونے کے ساتھ. تو بھگوان کرشن نے جو ہے اس کی وہ دونوں جو چونچ ہوتی ہیں ان کو پکڑا اور چیر پھاڑ دیا, اس کو پورا کھول دیا اسے, اور وہ وہیں کے وہیں وہ اس کی مرتیو ہو گئی. تو شریمد بھاگوتم میں جو ہے اس کتھا کی اس پرکار سے چرچا آتی ہے. لیکن گرگ سنہتا میں تھوڑا اور ڈیٹیل میں بتایا گیا اس بارے میں, یہ جو یدھ ہوا جب یہ بکاسر آیا اور اس نے جب کرشن کے اوپر اٹیک کر رہا تھا تو سارے دیوی دیوتا گن تھے, کہتے ہیں ارے اس کی ہمت کیسے ہوگی, ہاں بھگوان کرشن اپنی لیلائیں کرنے آ رہے ہیں اور یہ بکاسر یہ کہاں سے آ گیا. تو جتنے بھی دیوی دیوتا تھے وہ سب کے سب آ گئے. تو وہاں پر اندر بھی آئے, اندر نے جو ہے اپنا جو تھنڈر بولٹ ہے جو ان کا وجر ہے اس کے اوپر پرہار کیا, لیکن اس کے اوپر کوئی پربھاؤ نہیں. یہ ابھی بھی جو ہے اس نے پھر جو ہے کرشن کے اوپر اس نے آکرمن کرنے کا سوچا کہ ورج کا تو میرے اوپر کوئی پربھاؤ نہیں پڑے گا. اس کے بعد برہما جی آئے, برہما جی نے اپنا برہم دنڈ ہوتا ہے نا وہ اس کے اوپر مارا بہت تیز ہے. جو برہم دنڈ جب اس کو پڑھا بکاسر کو تو وہ جو ہے 48 منٹ کے لیے وہ بے ہوش ہو گیا, لیکن 48 منٹ کے بعد پھر سے ہوش میں آ گیا. سوچے برہم دنڈ کھانے کے بعد بھی جو ہے اتنا سالڈ ڈنڈا ہوتا ہے وہ, لیکن پھر بھی جو ہے اس کے اوپر پربھاؤ نہیں پڑا, پھر سے اٹھ گیا وہ, پھر سے اس نے اٹیک کیا. تو شیو جی نے جو ہے اپنے ترشول سے اس کے اوپر حملہ کیا, تو ترشول سے جو ہے اس کا ایک پنکھ کاٹ دیا. تو لیکن اس کے بعد بھی جو ہے یہ جو بکاسر تھا اتنا شکتیشالی تھا اس کے اوپر اور پربھاؤ نہیں پڑا, یہ اتنا ہی شکتیش کے ساتھ پھر سے لڑنے کے لیے آ گیا. تو جو وایو ہے اس نے اپنا جو وایو جو ہتھیار ہے اس سے آکرمن کیا, تو بلکہ اس وہ تو اس کے تو پنکھ ایک پنکھ تو تھا, ایک پنکھ سے اڑنے لگا اور وہ جو ہے وایو کا جو آسر تھا اس کو نشفل کر دیا. اس کے بعد یم دنڈ, یمراج جس سے دنڈ دیتے ہیں, وہ جب اس سے پرہار کیا یم دنڈ ٹوٹ گیا, اور لیکن جو ہے بکاسر کے اوپر اس کا پھر بھی پربھاؤ نہیں پڑا. اس کے بعد سوریہ دیو نے جو ہے 100 تیر اس کے اوپر بھیج دیے کہ اس کو بھید دوں گا اچھے سے, چیر پھاڑ دیں گے میرے 100 تیر اس کو. لیکن وہ تیر گئے, لگ گئے اس کو, لیکن پھر بھی بکاسر کے اوپر پربھاؤ نہیں پڑا. اور اس کے بعد کبیر نے کیا کیا, اپنی تلوار سے اس کا دوسرا پنکھ بھی کاٹ دیا کہ یہ آپ اڑ نہیں سکے گا. شیو جی نے تو اپنے ترشول سے مارا تھا تو ایک پنکھ کٹا تھا اس کا, اب میں تلوار سے اس کا دوسرا پنکھ بھی کاٹ دیتا ہوں. تو دوسرا پنکھ بھی کاٹ دیا, لیکن پھر بھی بکاسر جو تھا وہ اس کے بل میں اس کی شکتی میں کوئی کمی آئی نہیں رہی تھی. پھر سوم نے جو ہے اس کے اوپر جو آئس ویپن کیا بولیں گے, ٹھنڈی کا ویپن جو ہے, ٹھنڈی کا ہتھیار, اس کو جو ہے جمع دینے کے لیے ایک ہتھیار بھیجا. تو ٹھنڈی کے کارن جو ہے تھوڑی اس کو مورچھا ہوئی, لیکن پھر سے جو ہے کھڑا ہو گیا کہ نہیں میرے کو کرشن کو مارنا ہے. اس کے بعد اگنی نے سارے اس کے شریر کے اوپر جتنے بھی پنکھ تھے جلا دیے, مطلب کتنی زیادہ دینی اوستھا ہے اس کی. لیکن وہاں بالکل ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کیونکہ وہ راکشس ہیں, کرشن کو مارنے کے لیے آئے ہیں. لیکن ویسے اگر کسی دیکھیں کہ کسی اوپر اتنے پرہار ہو رہے ہیں تو بکتا ہردے تھوڑا پگھل جاتے ہیں, ارے بہت ہو گیا اتنا کیوں مار رہے اس کو. لیکن بکاسر جو ہے یہاں پر ایک راکشس ہے. اور اس کے بعد اگنی کے بعد ورن نے جو ہے اس کو رسی سے باندھا اور زمین میں کھدیڑتا ہوا لے گیا, وہ کئی سینکڑوں میل تک گھمایا, خوب رگڑا اسے. اس کے بعد بھی اس نے رسی چھڑک دی اس نے بکاسر نے, پھر بھی وہ پھر سے کھڑا ہو گیا. उसके बाद भद्रकाली आई, काली मां होती है ना, वो उन्होंने अपना गदा ली और वो उसे सर पे मारी धाड़, और सर जो है वो टूट गया उसका यहां से, तो थोड़ा वो चकरा के फेंट होने लगा, लेकिन फिर से खड़ा हो गया। उसने कहा बस बहुत हो गया इन देवी देवताओं का। तो उसके बाद चिंघाड़ा वो, इतने जोर से चिल्लाया, ऐसे चिंघाड़ा वो कि सारे देवी देवता भाग गए, कहते बहुत हो गया भाई, ये ऐसे हमसे नहीं निपटेगा ये। फिर जो है उसने कृष्ण के ऊपर आक्रमण किया और कृष्ण को उससे निगला, और कृष्ण जो है, कृष्ण ने फिर से, कृष्ण जो है अपने आप को इतना गर्व मना लिया कि जो है वो सह नहीं कर पाया, उसने फिर कृष्ण को बाहर उगल दिया। फिर बाकी जो कथा है फिर वैसे चलती है। उसके बाद ये उसने फिर से चोंच से प्रहार किया, तो कृष्ण ने उसकी चोंच ली और फाड़ दी उसे। तो जैसे ही फाड़ा, तो जैसे ही तो ये सब जो है देख रहे थे गोपगण और जो बलराम जी और जितने और देवी देवता भी आए हुए थे, वो थे ना वहां पर, तो उन्होंने जो है वास्तव में उनके पुष्पों की वर्षा की कि आखिरकार ये जो बकासुर था जिसको मारना हम लोगों के लिए असंभव था, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर अस टू किल दिस डीमन, तो जो है अंततः भगवान ने इसको मार दिया। तो सब सबको जो है बड़ी संतुष्टि का अनुभव हुआ। तो बकासुर आपने देखा कि जो है ये कितना ज्यादा जो है शक्तिशाली था। गर्ग संहिता बताया जाता है कि पिछले जन्म में ये सुहोत्र नाम के एक गंधर्व का पुत्र था। तो वास्तव में ये बकासुर बना कैसे है? इसके बारे में चर्चा आती है गर्ग संहिता में कि पिछले जन्म में ये सुहोत्र नाम के गंधर्व का एक पुत्र था। तो ये जो है जो कैलाश है पर्वत, वहां पर बहुत ही सुंदर फूल होते हैं, बहुत बड़े और बहुत सुंदर महक वाले फूल होते हैं, वो तोड़ने के लिए गया था कि कृष्ण को अर्पित करूंगा मैं। तो जैसे ही अर्पित करने के लिए गया तो जितने भी जो शिवजी के पार्षद थे उन्होंने पकड़ लिया इसको, अरे यहां पर कैसे आ गए तुम ये फूल पकड़ने के लिए, फूल तोड़ने के लिए, पकड़ के जो है शिवजी के पास ले गए। तो इन्होंने बोला, सुहोत्र ने कहा कि मैं तो कृष्ण की सेवा के लिए लेके जा रहा हूं, ये फूल अपने लिए थोड़ी लेके जा रहा हूं। कह देखो तुम्हारा, शिवजी ने कहा कि तुम्हारा जो मंशा थी तो बिल्कुल, वो तो बिल्कुल सही थी, ठीक थी, लेकिन क्योंकि मैंने पार्वती को वचन दिया हुआ है कि इस जगह से जो भी फूल तोड़ेगा मैं उसे श्राप देके उसे राक्षस बनाऊंगा, और वो इसलिए क्योंकि ये यहां पर जो फूल हैं, यहां पर 1,00,000 फूल हैं, यानी कि 100,000। श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा देवी की जय, श्री श्री गौरताय की जय, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी की जय। तो शिव जी ने कहा यहां पर 100,000 फूल ही थे, तो रोज है 1,000 फूल जो है पार्वती भगवान श्री कृष्ण को चढ़ाती हैं, तो इसीलिए यहां पर 1,00,000 फूल ही थे, यानी कि 100 दिन के लिए रोज का 1,000 फूल, तो 100,000 यानी कि 1,00,000 फूल थे यहां पर। तुमने जो है इससे कुछ तोड़ लिए, अब जो है कम हो गए ना थोड़े से, तो इसीलिए मैंने उन्हें वचन दिया था कि कोई तोड़ता हुआ नजर आएगा तो मैं श्राप दूंगा, तो इसलिए मुझे तुम्हें श्राप देना पड़ रहा है, लेकिन तुम्हारा उद्धार होगा, अगले बार जब तुम राक्षस बनोगे तो भगवान श्री कृष्ण के ही हाथों मारे जाओगे और तुम्हारा तुमको मुक्ति मिलेगी, तुम भगवत धाम जाओगे। तो इस प्रकार से जो है जब श्राप मिला था सुहोत्र को, तो अगले जन्म में ये बकासुर बना था। तो बकासुर को आपने देखा कि कितनी कठिनाई से जो है देवी देवताओं ने कितना संघर्ष किया इसको मारने के लिए, लेकिन वो इसको मार ही नहीं पा रहे थे। तो जैसे कि हमने शुरुआत में चर्चा की थी कि वास्तव में बकासुर जो है ये कपट, ये दंभ का प्रतीक है, तो वास्तव में ये यही चीज बताती है यहां पर कि वास्तव में ये दंभ, ये जो कपट है, ये कितना ज्यादा गहरा है, इसको जो है खत्म करना एक साधक के लिए बहुत बहुत कठिन है, और किसी देवी देवता में जो है इतनी क्षमता नहीं है कि वास्तव में हमारे अंदर के उस दंभ को, उस कपट को मार सके। सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से या उनके प्रतिनिधि की कृपा से ही वास्तव में संभव है कि हम इस दंभ को, इस कपट को जो कि हमारे अंदर बहुत ही गहराई के साथ बैठा हुआ है, इसको हम निकाल सकें। तो इस लीला में जो है कई चीजें हैं जो कि विवेचना करने लायक हैं। तो जैसे कि जो बकासुर ने भगवान श्री कृष्ण को निगला तो उसको इतना गर्म लगा कि उसने उगल दिया उसने कृष्ण को बाहर, इतना गर्म लगा उसे। अब ये बात जो है वास्तव में विचार करने लायक है कि कृष्ण जो है वो तो इतने मधुर हैं। वल्लभाचार्य जी की बड़ी सुंदर रचना है, वेरी ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन, वेरी स्वीट कॉम्पोजिशन, मधुराष्टकम, कि भगवान जो है उनका चेहरा कितना मधुर है, उनकी मुस्कुराहट कितनी मधुर है, उनके नयन कितने मधुर हैं, उनका चलना कितना मधुर है, उनका दौड़ना कितना मधुर है, उनका सोना कितना मधुर है, उनका बातचीत करना कितना मधुर है, उनकी लीला कितनी मधुर है, उनके गोप कितने मधुर हैं, उनकी यमुना कितनी मधुर है, उनका राक्षसों का मारना वो कितना मधुर है, तो उनका तो सब कुछ मधुर है। मधुराधिपते आए क्या है रखिलम मधुरम। तो वो जो मधुरताओं में सर्वश्रेष्ठ हैं उन परम भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूं, ये वल्लभाचार्य लिख रहे हैं। तो कृष्ण वास्तव में कितने ज्यादा मधुर हैं, कितने ज्यादा वास्तव में अमृतमय है, रसो वैसा, तो रस के सागर है वो। तो ऐसे अनुराग वल्ली करके भी एक बहुत सुंदर कंपोजिशन है, बहुत ही जो है भक्ति से ओतप्रोत है, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने लिखा है। इसके अंदर मैंने लिखा है कि मेरी इस मैं जो आत्मा हूं, मेरा ये एक शरीर क्यों हो, मेरे करोड़ों करोड़ों शरीर हो, उन करोड़ों करोड़ों शरीर में हर एक शरीर में मेरे करोड़ों करोड़ों मुंह हो, और उन करोड़ों करोड़ों मुंह में जो है हर एक मुंह में मेरी करोड़ों करोड़ों जीवाएं हों, और उन करोड़ों करोड़ों जीवाओं में हर एक जीवाओं के ऊपर करोड़ों करोड़ों नाम हो। क्योंकि वास्तव में आपके जो नाम है, आपके रूप, आपके गुण, जो आपकी लीलाएं हैं, उनमें जो इतना अमृत भरा है कि वास्तव में ये कम पड़ते हैं, ये जो मेरे पास है, ये एक शरीर जिसमें कि सिर्फ एक ही मुंह है, एक ही जीवा है, ये कम पड़ते हैं भगवान। तो मेरे करोड़ों करोड़ों शरीरों में मेरे करोड़ों करोड़ों कान हो, जिनसे मैं करोड़ों करोड़ों गुना जो आपके अमृत का रस है, जो आपकी भक्ति का रस है, उसका आस्वादन कर सकूं। मेरे उस करोड़ों करोड़ों शरीरों में मेरे करोड़ों करोड़ों हृदय हो, जिनसे मैं आपका आलिंगन करूं। मेरे करोड़ों करोड़ों हाथ हो, जिनसे मैं आपकी सेवा करूं। मेरी करोड़ों करोड़ों बुद्धियां हो, जिनसे मैं ये सोच सकूं कि मैं आपकी सेवा किस प्रकार से करूं। हे कृष्ण, उस भला शरीर का क्या लाभ जिसमें सिर्फ ये एक ही मुंह है, एक ही कान है। मेरे करोड़ों करोड़ों शरीर होने चाहिए थे, करोड़ों करोड़ों कान, करोड़ों करोड़ों जीवाएं, उन करोड़ों करोड़ों जीवाओं में करोड़ों करोड़ों नाम होने चाहिए थे, तब जाकर मैं कहीं आपकी उस अनंत मधुरता का थोड़ा सा आस्वादन कर पाता। इतनी मधुरता है आप में। तो आचार्यगण तो बता रहे हैं कृष्ण कितने ज्यादा मधुर हैं, लेकिन यहां पर बकासुर को वो मधुरता एकदम उल्टी प्रतीत हुई। इतनी ज्यादा गर्मी लगी, इतना ज्यादा मतलब ऊष्मा अग्नि से भी ज्यादा गर्म लगे कृष्ण। तो इसका एक कारण जो आचार्यगण बताते हैं वो ये है कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की ब्रह्म ज्योति जो उनके शरीर से निकल रही है, उसकी अग्नि को सहन नहीं कर पाया वो, और उसने कृष्ण को निगल दिया। लेकिन हमारे हम लोगों के लिए जो साधक हैं, हमारे लिए ये किस प्रकार से महत्वपूर्ण है, हाउ इज इट इंपॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है ये क्योंकि वास्तव में जिस तरह से कृष्ण को जो है बकासुर अपने गले में नहीं रख पाया, उसी तरह से हम कृष्ण के नाम को जो कि कृष्ण से अभिन्न है उसका जप ठीक से नहीं कर पाते हैं, नाम का कीर्तन हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। जप करते हुए हमें सबसे ज्यादा मधुर नींद आती है, भगवान कृष्ण के नाम की मधुरता का अनुभव नहीं होता, उस वक्त बड़ी मधुर नींद आती है। जब कृष्ण की लीलाओं की चर्चा होती है तो बड़ी मधुर नींद आती है, कृष्ण के नाम का कीर्तन होता है तो बड़ी मधुरता से मन कहीं और भाग जाता है, लेकिन कृष्ण की मधुरता की ओर हमारा ध्यान तो कभी जाता ही नहीं। तो हमने जो है भगवान की मधुरता का बिल्कुल बकासुर की तरह एकदम उल्टा आस्वादन हम करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो बकासुर हमारे अंदर भी है कि हम इस नाम का आस्वादन नहीं कर पा रहे जो कि वास्तव में अमृत से भरा हुआ है, अमृत से भरा हुआ है। इसीलिए वास्तव में जब कई बार हम जैसे कि एक बार एक व्यक्ति ने किसी से कहा कि एक भक्त से पूछा कि आपका सिद्धांत क्या है, तो भक्त ने कहा चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं आपके मंदिर मैं आके देखता हूं भाई किस तरह से चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। तो सुबह सुबह आया वो मंगल आरती के बाद, तब जो है भक्त जप कर रहे थे हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। बाहर की माला जल्दी ज्यादा तेज चल रही होती है, सुलह हो गई, हाँ इसको कहीं कबर्ड में छुपा दो, दिन में इसकी शक्ल नहीं देखूंगा अब। तो वो बकासुर हमारे अंदर जो है वो कृष्ण के नाम का आस्वादन हमें नहीं करने देता। तो जब हम असावधानी पूर्वक किए गए जब के साथ अपना संबंध बनाते हैं तो अभिदय क्या होगा, और ज्यादा असावधानी पूर्वक किया गया जब। जब असावधानी पूर्वक किए गए जब से संबंध बनता है तो असावधानी पूर्वक जब ही अभिदय बनता है, और प्रयोजन क्या होता है, प्रयोजन होता है अपराध, और अपराध के साथ साथ और ज्यादा किया जाने वाला असावधानी पूर्वक जप। सो इनअटेंटिव चैंटिंग प्रोड्यूसेस मोर इनअटेंटिव चैंटिंग, बैड चैंटिंग प्रोड्यूसेस मोर बैड चैंटिंग। तो जब हम वास्तव में जप ठीक से नहीं कर पाते तो ये जो हम जप ठीक से नहीं करते तो ये गलत तरीके से किया गया, जब ये बुद्धि देता है कि देखो भाई जब तो इतना ही हो सकता है, मेरे पास ना सेवाएं बहुत सारी है ना, सेवाएं ज्यादा जरूरी है, नाम तो देखो होता रहता है ना, तो ये तो जो है बैकग्राउंड म्यूजिक कितना होना चाहिए हरि नाम, तो बाकी जो है हमारे जितने प्लान्स हैं वो चलने चाहिए, वो सबसे जरूरी है। हाँ कि इमीडिएटली इसके बाद मेरे को क्या करना है वो सबसे जरूरी है, हरि नाम तो होता रहता है, ये तो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना। तो जो है वास्तव में ये बकासुर जैसा स्वभाव होने के कारण ये बुद्धि आती है इस प्रकार की। तो इसलिए जो है वास्तव में भक्त अक्सर संघर्ष करते हैं, और ये जो हरि नाम है वास्तव में जो कि भगवान का सबसे ज्यादा कृपालु रूप है, सबसे ज्यादा कृपालु रूप है, उसी के साथ हम जुड़ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर कहीं ना कहीं दंभ है। क्योंकि जप में सफलता का जो मेन कारण है वो है जप के पीछे जो हमारा भाव है, बहुत जरूरी है। ऑफकोर्स आनंद नम्बुदी वर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जब आनंद प्राप्त करने के लिए जब जप किया जाता है तो आनंद इसमें नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आनंद का एक सिद्धांत है कि आनंद के पीछे जितना आप भागेंगे ना ये उतना आपसे दूर भागेगा। जैसे यश भी होता है, जो व्यक्ति यश के पीछे जितना भागता है ना वो यश उससे दूर भागता है, और जितना कोई यश से दूर भागेगा या जो है निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा प्रसन्नता और यश उसके पीछे भागेंगे। ये सिद्धांत है, ये नियम है। तो जब कोई जप करता भी है तो सोचता है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे नाम राम राम हरे हरे, अरे आनंद आ रहा क्या हो गया, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे नाम राम राम हरे हरे, अरे आनंद आ रहा प्रभु, आनंद आ रहा कमाल है, आनंद आ रहे, मुझे तो भक्ति बोला था आनंद आएगा इसमें, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे नाम राम राम, अरे आनंद आ रहा प्रभु, देयर इज नो ब्लिस प्रभु, आनंद आ रहा प्रभु, आनंद आ रहा हरे कृष्ण कृष्ण। क्या हरि नाम हमारे लिए सिर्फ आनंद प्रदान करने का एक वस्तु मात्र है? तो जब इस भाव के साथ जब साधक जप करता है तो वास्तव में हरि नाम उसे कभी आनंद नहीं देने वाले, उसे सेवन मुखे ही जीवत दो बताया गया। तो सेवा का भाव जब तक नहीं होगा तब तक जो है हरि नाम में रुचि नहीं आएगी। श्रीलोक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर क्या कहा करते थे, वन शुड हियर विद सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स, जो कान है ना वो सेवा भाव में जो है उठ जाए, वन शुड हियर विद सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स, तो वैसे हमें सुनना चाहिए वास्तव में। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जब अपनी बांसुरी अपनी वंशी के ऊपर जब कोई धुन छेड़ते थे तो उसके बाद जो जितनी गौएं हुआ करती थी उनके कान जो है उस तरफ हो जाया करते जहां कृष्ण की बांसुरी की धुन आ रही है, वो मुड़ जाया करते थे, सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स। तो हरि नाम जो है हमें वैसे ही लेना है विद सर्विस इंक्लाइंड ईयर्स, तो तब जो है वास्तव में हरि नाम का आस्वादन हो सकता है। अदरवाइज सालों साल बीत जाएंगे, मालाएं टूट जाएंगी, रगड़ते रगड़ते कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। तो वास्तव में जब तक जो है भाव हमारा जो सेवा का भाव अगर नहीं होगा अगर जब करते वक्त, तो वास्तव में ये बकासुर का जो मनोभाव है ये कभी भी हमें हमारे साधना में सफल नहीं होने देगा। क्योंकि इसके लिए बहुत आवश्यक है निस्वार्थ भाव, सेवा का भाव। तो श्रील प्रभुपाद के जो एक गुरु भाई हुए कृष्णदास बाबाजी महाराज, उन्होंने बोन महाराज से कहा, बोन महाराज से जिनको कि श्री भक्ति सांस सरस्वती ठाकुर ने लंदन भेजा था प्रचार करने के लिए कि वो गौड़ी वैष्णव सिद्धांत का वहां प्रचार करेंगे, लेकिन वहां से जो है काफी उन्होंने पैसा ही भेजा था उन्हें कि प्रचार में कोई सफलता हो, कई $100 थे भेजा करते थे, आई थिंक $700 करके भेजते थे वो हर महीने कि वहां प्रचार शुरू हो, लेकिन बोन महाराज जो थे वहां पर असफल होकर लौटे थे। लेकिन श्री प्रभुपाद यहां से सिर्फ ₹40 लेके गए थे और उन्हें 11 साल में जो है इतनी 108 मंदिर और पूरे विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार कर दिया। तो कृष्णदास बाबाजी महाराज ने बोन महाराज से कहा, मैंने कहा आप भी बहुत विद्वान हैं और भक्तिविदान स्वामी महाराज भी बड़े विद्वान हैं, आपको भी अंग्रेजी आती है, वो भी अंग्रेजी में बड़े दक्ष हैं, आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, आप भी शास्त्र में बड़े परिपक्व हैं, वो भी शास्त्र में बड़े परिपक्व हैं, लेकिन आप असफल रहे पाश्चात्य देश में प्रचार करने के लिए, लेकिन भक्तिविदान स्वामी महाराज वो सफल रहे। जानते हैं क्यों? सिर्फ एक कारण कि उनका हरि नाम में दृढ़ विश्वास था। तो प्रचार में जो है सफलता तभी मिलेगी जब हमारा हरि नाम में दृढ़ विश्वास होता है। कोई भी टेंपल, कोई भी सेंटर हमारा इस्कॉन का, उसकी सफलता तीन चीजों के ऊपर निर्भर करती है प्राइमरीली। अफकोर्स ये ऐश्वर्य होना जरूरी है क्योंकि कई भक्त लोग आते हैं तो हमें प्रचार करने का मौका मिलता है, लेकिन कोई भी सेंटर कोई भी टेंपल उसकी सफलता तीन चीजों के ऊपर निर्भर करती है। कि वो तीन कार्य कितनी ज्यादा दक्षता के साथ, कितनी ज्यादा प्रीति के साथ किए जा रहे हैं। और वो तीन कार्य हैं कृष्ण पूजा, कृष्ण नाम कीर्तन और कृष्ण कथा। यदि ये तीन कार्य बड़ी दक्षतापूर्वक, बड़े श्रद्धा भाव के साथ, प्रीति के साथ जब ये कार्य किए जाते हैं, तो वास्तव में वो उस मंदिर, उस सेंटर की सफलता को कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो है कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो कि श्री प्रभुपाद जी के गॉड ब्रदर थे, उन्होंने बोन मारा चुका कि भक्तिदान स्वामी महाराज की सफलता कारण है कि उनका हरिनाम में बड़ा दृढ़ विश्वास था। तो इस प्रकार का विश्वास हमारा भी होना चाहिए। तो जैसे कि जब कृष्ण बलराम मंदिर की जब स्थापना हुई भुवनेश्वर में, तो श्री गौर किशोरदास गौर गोविंद महाराज ने कहा, आई हैव ओपन्ड अ क्राइंग स्कूल, मैंने क्रंदन करने का यहां एक पाठशाला खोली है, यहां हम सब क्रंदन करेंगे, यहां हम सब रोएंगे। तो किसी ने कहा ये किस प्रकार का मंदिर खोल रहे हैं यहां पर, ये क्रंदन करने वाला स्कूल कैसा हो गए? तो हां, हम क्रंदन करेंगे यहां कृष्ण के नाम का। तो यहां जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि वास्तव में हरिनाम हमें ऐसे लेना चाहिए जैसे कि कोई बच्चा होता है वो अपनी मां का की उपस्थिति चाहता है, उसकी अनुपस्थिति में रो रहा है वो, तो वैसा ही हमारा हरिनाम होना चाहिए। हमारा तो हरिनाम ऐसा होता है कि दूध पी के बच्चा सो गया, अब मां की आवश्यकता है ही नहीं। तो बकासुर जो है हमें दूध पिला के सुलाया था, कहता है अरे क्यों क्रंदन कर रहे हो हरिनाम का, सो जाओ, इंजॉय लाइफ। तो वास्तव में जो है, तो ये जो है वास्तव में क्रंदन होना चाहिए हरिनाम। तो सेवा की जो है भूख होना, ये बहुत 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 आवश्यक है। नहीं तो अगर वास्तव में ऐसे कि आज हम कपट और दंभ की बात करें, जब कपट और दंभ के भाव के साथ जब हरिनाम लिया जाता है, तो हरिनाम तो निकलता है ऑफकोर्स, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, लेकिन उसका प्रभाव इतना ज्यादा नहीं पड़ता, पूरी तरह से नहीं पड़ता। जैसे कोई बंदूक होता है ना, बंदूक के अंदर अगर नकली गोलियां डाली जाती है ना, बिल्कुल वैसी आती आवाज आती है ठाए, असली गोली डालो तो भी वैसी आवाज आती है ठाए, लेकिन नकली गोली जब डाली होती है, गोली चलाओ ना, प्रभाव नहीं पड़ता सामने वाले के ऊपर, उसको कोई हानि नहीं होती। तो फर्क क्या होता है, दोनों में सेम आवाज आ रही है ठाए, दोनों में सेम आवाज, लेकिन एक जो है जो नकली गोली होती है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो असली गोली पड़ती है तो व्यक्ति मर जाता है या घायल हो जाता है। तो इसी प्रकार से जब दंभ के साथ जब हरिनाम लिया जाता है, जब दंभ ये कपट भाव जब होता है, जब सिंसेरिटी की कमी होती है, गंभीरता की कमी होती है, जब हमारे भक्ति या कृष्ण प्रेम के अलावा कुछ और मोटिव्स होते हैं हरिनाम लेने के पीछे, तो हरिनाम तो बिल्कुल वैसे ही नजर आएगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन उसका प्रभाव ऐसे नहीं पड़ता। तो बाहर से भले ही दोनों सेम दिखें, लेकिन वास्तव में अंदर जो भाव है वो बहुत आवश्यक है, कि हरि नाम के प्रति सेवा का भाव होना बहुत बहुत आवश्यक है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने दो चीजें कही, जस्ट चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। तो लेकिन वास्तव में हमें ये बात समझनी होगी कि जब तक जो है हम हरि नाम के प्रति अपना जो भाव है उसको ठीक नहीं करते, तो हरि नाम की पूरी कृपा नहीं मिलेगी। अगर हरि नाम ठीक से ना लिया जाए तो भी कृपा करता है, इतना कृपालु है, लेकिन हमें पूरी कृपा चाहिए, क्योंकि अब हम सिर्फ सुकृतियां इकट्ठी करते हुए अपना मनुष्य जीवन नहीं बिता सकते। अगर कोई ध्यान पूरा जप नहीं कर पाता तो भी हरिनाम से सुकृति देता है, इतना ज्यादा दयालु है हरिनाम। हाँ, लेकिन प्रयास कर रहा है वो तो पूरी तरह से नहीं कर पा रहा, तो भी सुकृति मिलेगी उसे। तो लेकिन हमें जो है सुकृतियां इकट्ठे करने का समय हमारे पास है नहीं, क्योंकि मनुष्य योनि बड़ी छोटी है कलयुग में। अब यहां 60,000 साल है तो है नहीं हमारे पास सतयुग की तरह, है ना, और जिस तरह से मेट्रोपॉलिटन सिटी में हाल है उस तरह से हमारे पास 20-25 साल से ज्यादा नहीं है। उसमें ऑफकोर्स सोना खाना पीना नहाना धोना और बहुत सारी चीजें करनी है उसके अंदर, उसमें जो है कृष्ण प्रेम साधना। तो 60,000 साल पहले लोग वैकुंठ लोग जाने के लिए करते थे, हमारे पास सिर्फ 20-25 साल है गोलोक वृंदावन जाने के लिए, ब्रज भक्ति के लिए। तो बहुत ये मतलब कि अगर कोई गणना देखे तो वास्तव में इम्पॉसिबल लगेगा। तो हमारा उत्साह भी उसी हिसाब से हमें बढ़ाना होगा। तो जैसे कि एक बार श्रील प्रभुपाद के एक शिष्य ने कहा, श्रील प्रभुपाद जब मैं जप करता हूं ना तो मेरे को जो है लाल रंग की बत्ती मेरे मन में जल जाती है, यहाँ पे ना लाल रंग यहाँ जल जाती है। तो वो एक्सपेक्ट कर रहा था प्रभुपाद जी बोलेंगे अरे तो बड़ी अच्छी बात है, अभी है ना लाल बत्ती जल रही है, थोड़े समय बाद ये हरी हो जाएगी, फिर नीली हो जाती है, और फिर जो है ये गोल्डन बन जाती है, फिर बल्ब जल जाता है, फिर वो ही जो है जप की सफलता है। वो कुछ ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा था प्रभुपाद जी कुछ बोलेंगे। तो उसने बोला श्रील प्रभुपाद जब मैं जप करता हूं ना मेरे मन में यहाँ पे ना लाल रंग की ना बत्ती जल जाती है। प्रभुपाद जी ने कहा जप करते रहो वो चली जाएगी। तो वास्तव में ये बात हमें समझनी है। हाँ, तो इस प्रकार से कई कभी कभी हम अपने मनोधर्म लगा देते हैं हरिनाम के ऊपर, लेकिन जो है हरिनाम बहुत बहुत ऊंचा है। तो इसके लिए हमें क्रंदन करना होगा, भीख मांगनी होगी। वास्तव में देखा जा रहा है कलयुग में साधना सिद्ध होना ऑलमोस्ट नामुमकिन है, यहां कृपा सिद्ध ही हो सकते हैं यहां तो हम लोग, क्योंकि शरीर में आलस भरा है, मन में आलस भरा है, हमेशा थके थके रहते हैं, तो क्या क्या जाएंगे गोलोक वृंदावन, क्या कृष्ण प्रेम साधेंगे। तो वास्तव में हमें हमारी जो हमारा जब जो हरिनाम होना चाहिए वो कृपा की याचना ही होनी चाहिए कि भगवान मेरे बस का है नहीं कुछ, मेरे बस का कुछ है नहीं, तो आप कृपा कर देंगे ना तो मेरा कुछ हो जाएगा। तो जो है इस क्रंदन इस याचना के साथ हमें हरिनाम लेना चाहिए, इसलिए बड़ा ध्यानपूर्वक लेना चाहिए। सो चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा इज नॉट द सोल्यूशन, अटेंटिव चैंटिंग ऑफ हरे कृष्णा इज द सोल्यूशन। कलयुग में बड़ा छोटा समय, बहुत थोड़ा समय हमारे पास। तो जैसे हमने देखा तो ये हरिनाम जो है तो बड़ा कठिन था उसके लिए, बकासुर के लिए। तो बकासुर जो है वो हमको वास्तव में हरिनाम के साथ जुड़ने नहीं देता, तो इस बकासुर का मरना बहुत आवश्यक है। श्री भक्ति साहब महाराज ने एक लेटर में लिखा अपने डिसाइपल को, वी शुड गेट रिड ऑफ दिस अनर्थास एज सून एज पॉसिबल सो दैट वी कैन सर्व कृष्ण प्योरली। बहुत आवश्यक है हमारे लिए कि हम अनर्थों से जल्दी मुक्त हों ताकि हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति कर सकें। तो वहां से बड़ा गंभीर होना चाहिए इसलिए भक्त को, किसी प्रकार का दंभ और कपट ये बहुत बहुत हानिकारक है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वो महा महापतित पावन है, महा महा महापतित पावन है। श्री प्रभुपाद ने कहा था चाइना वुड बी द कंट्री हु वुड गेट द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य एट लास्ट बट दे वुड बी द फर्स्ट टू गेट डिलीवर्ड। क्यों? क्योंकि वो लोग बहुत बहुत पतित हैं, चंडाल योनि है, लेकिन बहुत पतित, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा उन्हें मिलेगी क्योंकि वो बहुत पतित है। इसलिए जो महाप्रभु हैं वो महा महापतित पावन है, हम महा महापतित, वो महा महापतित पावन, तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन एकदम है। लेकिन महाप्रभु इतने से भी कपट पावन नहीं है, उन्हें कपट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर कोई जो है संघर्ष करते हुए कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा तो महाप्रभु से ले लेंगे, खींच लेंगे ऊपर, लेकिन कोई दंभ के कारण, कोई कपट के कारण आगे नहीं बढ़ता तो महाप्रभु से अपनी कृपा नहीं देंगे। और ये उन्होंने दिखाया मुकुंद के साथ जो उन्होंने लीला की, जो मुकुंद जाया करते थे मायावादियों के साथ, निर्विशेषवादियों के साथ बैठते थे और भक्तों के साथ भक्तों जैसा व्यवहार करते थे, तो ये दंभ था, तो ये महाप्रभु को पसंद नहीं आया। महाप्रभु ने कहा कि मैं उसे अपनी कृपा नहीं दूंगा। तो जब सभी भक्तों ने जब याचना की तो महाप्रभु ने कहा उसे मेरी कृपा मिलेगी 100 करोड़ जन्मों के बाद। तो मुकुंद नाचने लगे, हाँ 100 करोड़ जन्म के बाद मुझे महाप्रभु की कृपा मिलेगी, 100 करोड़ जन्मों के बाद मुझे महाप्रभु की कृपा मिलेगी। तो जब ये सिंसेरिटी जब उन्होंने देखी मुकुंद की, तो महाप्रभु ने अपनी कृपा दी। या छोटा हरिदास ठाकुर के साथ हम देखते हैं, तो कपट पावन नहीं है महाप्रभु, वो महा महापतित पावन है, लेकिन इतने से भी कपट पावन नहीं है महाप्रभु। इसलिए कपट को हमें छोड़ना होगा, उसे निकालना होगा, जो कि हृदय में जो है जिसकी जड़ें बहुत गहरी है हमारे हृदय में, निकालना होगा इसको। तो ये जो है हमें कभी भी जो है भक्ति में सिंसियर नहीं होने देता, तो सिंसियरिटी हमें लानी होगी। भक्ति साहब महाराज उपाख्यान उपदेश में दंभ का एक दंभ के ऊपर एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं कि एक जो है एक पंडित था जिसको कि एक लैंडलॉर्ड ने हायर किया था, एक जमींदार ने हायर किया था। तो लैंडलॉर्ड क्या करता था, रोज कुछ बादाम का भोग लगाता था, तो वो रोज बादाम ला के देता था जो पुजारी है, पुजारी से कहता था भाई जाके जो है शालिग्राम शिला को भोग लगा दो। कहता हां जी बिल्कुल जी जैसा आप कहें जी। जाता था अंदर, जाता था वो दरवाजा बंद करता था, मंत्र को उच्चारण करता था, लेकिन शालिग्राम शिला से ही वो बादाम तोड़ के खाता था अंदर। तो जो है ऐसा काफी समय चलता रहा। तो लेकिन एक दिन जमींदार को जो है शक हुआ कि एक बार देखूं तो सही कैसे भोग लगाता है। तो जो है उन्होंने पीछे ही खिड़की से छुप के जब देखा तो देखा कि शालिग्राम शिला जिनको भोग लगाना है उसी शालिग्राम शिला से ये बादाम तोड़ के खुद खाता है वास्तव में। तो इसी प्रकार से जिस व्यक्ति में दंभ होता है तो वो कृष्ण भावना का या भक्ति की जो सुविधाएं हैं उनका प्रयोग करता है अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए, तो उसको दंभ कहते हैं वास्तव में। और ये माया की जो है बहुत ही गहरा षड्यंत्र है ये। जैसे कि एक बार एक व्यक्ति था, उसने बहुत बड़ा बंगलो खरीदा यहां जुहू पे, तो जुहू के आप सामने जो था एक पार्क था, तो पार्क था तो वहां पर कुछ बच्चे आके क्रिकेट खेलते थे। उसको बिल्कुल पसंद नहीं था कि यहां पर बच्चे आके क्रिकेट खेलें, तो लेकिन उनको कुछ बोल नहीं सकता था क्योंकि वो पब्लिक पार्क है, मना कैसे करें। तो उसने उसके लिए जो है एक खेल खेला, उसने जाके बोला कि देखो बच्चों जब तुम यहां क्रिकेट खेलते हो ना मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है कि मैं बता नहीं सकता। मैं बचपन में बहुत क्रिकेट खेलता था, अब तो बड़ा बिजनेस हो, मैं बिजनेस में बिजी हो गया ना, इसलिए अब मैं ना क्रिकेट नहीं खेल पाता, लेकिन तुम लोग खेलते हो ना, मुझे इतना अच्छा लगता है, इसलिए मैंने सोचा है कि रोज तुम लोगों को, हर एक व्यक्ति को 50-50 रुपए दिया करूंगा मैं। इतना अच्छा, इतना बढ़िया काम करते तुम लोग क्रिकेट खेल के यहां पे। तो ठीक है, बच्चों ने कहा बहुत बढ़िया है, क्रिकेट भी खेलते हैं, 50 रुपए भी बहुत बढ़िया है, तो है और क्या चाहिए हम। तो जो है उसने रोज 50 रुपए देने शुरू किए। तो 2-3 दिन के बाद जो है उसने कहा देखो ना, ये बिजनेस ना मेरा थोड़ा ठीक नहीं चल रहा, तो ये ना मैं 25 रुपए दे पाऊंगा आप। बच्चों ने कहा ठीक है कोई नहीं, 25 रुपए सही, 25 रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट भी खेल रहे हैं साथ में, 25 रुपए मिल रहे हैं। थोड़े समय बाद जो है उसने कहा बिजनेस ना मेरा बहुत खराब जा रहा है, तो ना मैं 10 रुपए दे पाऊंगा आप। मैंने कहा ठीक है अब चलो, अब 10 रुपए में काम चला लेंगे हम। हाँ, बच्चे फिर भी जो है क्रिकेट खेलते रहे। कुछ समय बाद उसने कहा देखो अभी ना मेरा बिजनेस ना ठप हो रहा है, तो मैं 2 रुपए दे पाऊंगा आप। कहते हैं अरे भाई साहब भिखारी समझा हम लोगों को, है 2 रुपए दोगे क्रिकेट खेलने के लिए, और छोड़ यार खेलना ही नहीं, आप दूसरे पार्क में चलते हैं, और छोड़ दिया उन्होंने और दूसरे पार्क में चले गए। और यही वो चाहता था वास्तव में। तो जो दम्भी व्यक्ति होता है माया उसके साथ यही खेल खेलती है, उसको ऐश्वर्य देगी, धन धनाढ्य, पावर, पोजिशन, सुख सुविधाएं सब कुछ देगी उसे। उसके बाद जब धीरे धीरे जब लेगी ना, हाँ, तो वास्तव में कभी कभी व्यक्ति जो है कृष्ण भावना को छोड़ देता है, और यही तो माया चाहती है। अल्टीमेटली हम लोग जो भक्त है वो किससे आया था, साधना करने के लिए, क्रिकेट खेलने के लिए जैसे बच्चे आए थे, वो आया नहीं था सुख सुविधाओं के लिए। उसने सोचा था भाई मैं हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करूंगा, भक्तों के संग में सुखी रहूंगा बस। लेकिन साथ में जब और कुछ मिलता है तो लगता है अरे बहुत बढ़िया जी, भक्ति व्यवहार साथ में यही मिल रहा है, अरे बहुत बढ़िया है, तो सुविधाएं मिल रही है, बहुत अच्छा है, अरे बहुत अच्छा है, तो अरे अरे ये बना दिया मेरे को, अरे कमाल है, अरे मेरे को इस डिपार्टमेंट का हेड बना दिया, अरे बहुत अच्छा है, अरे वेरी गुड, भक्ति भी चल रही है, ये भी चल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन जब माया इसको थोड़ा थोड़ा खींचती है, तो वो आया था भक्ति करने के लिए, लेकिन इन सुविधाओं से आसक्त होने के कारण वो भक्ति को छोड़ देता है वास्तव में। तो ऐसा ऐसा कब होता है वास्तव में, जब उसके हृदय में दंभ होता है, जब वो दंभ के द्वारा, कपट के द्वारा जो है, जब तो ये नहीं सोच पाता कि वास्तव में उसका ओरिजिनल उद्देश्य क्या था। बच्चों का ओरिजिनल उद्देश्य क्या था, पैसा कमाना ना, क्रिकेट खेलना बस। तो बच्चे भी, तो इस तरह से भक्त जो है, जो साधक है, वो इसलिए आता है भक्तों के समाज में कि बस हरिनाम कीर्तन करेंगे, भक्तों के संग में रहेंगे, साधु संग करेंगे, कृष्ण कथा, कृष्ण नाम कीर्तन, दिस इज लाइफ बस, और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जो उसके अंदर जो दम्भ है उसके बारे में अभी नहीं पता उसे। ऐसे एक सेइंग है, इन अ क्वेस्ट टू बिकम गुड आई डिस्कवर्ड हाउ बैड आई एम। तो जब वास्तव में भक्त जब भक्ति करना शुरू करता है, तो उसे पता लगता है कि हृदय में तो अरे ये कलमश भी है, अरे वो कलमश भी है, अरे काम करो लो मोह मत, अरे यार क्या क्या लंबी लिस्ट है। तो इन अ क्वेस्ट टू बिकम गुड वी डिस्कवर हाउ बैड वी आर। तो वास्तव में दम जो है ये बहुत गहरा है। ऐसे गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के पास एक बार एक व्यक्ति आया, तो वो जो है तब उस समय कृष्ण कथा तब जो है कीर्तन चल रहा था, कीर्तन में जो है वो भावावेश दिखाने लगा, कृष्णा कृष्णा, और आंसू जो है उसके निकल रहे थे आंखों से। हमने कहा अरे ये तो भाई, ये तो भाव की बड़ी ऊंची स्थिति में आ गया, ये तो देखो। तो गौर किशोर बाबा जी ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब वो व्यक्ति चला गया ना, तो सबने कहा बाबा जी महाराज आपने देखा कितना, ये तो बड़ा उच्च कोटि का वैष्णव लग रहा था, कोई कीर्तन हुआ तो आंखों से पानी और उसकी हवा जो आवाज है वो थरथरा रही थी, तो ये तो कोई उच्च कोटि का वैष्णव ही होगा ये। गौर किशोर बाबा जी महाराज ने कहा वो तो अभी नौसखिया भी नहीं है, वो तो अभी नौसखिया भक्त भी नहीं बनाया अभी। तो सब हैरान रह गए, ये क्या बोल दिया बाबा जी महाराज ने। बाबा महाराज ने कहा, तो गौर किशोर बाबा जी महाराज ने कहा कि वास्तव में ये जो भक्ति के जो भाव है, हाँ, ये जो है कभी भी पब्लिकली कोई शो नहीं करता, कोई भी जो है शुद्ध भक्त पब्लिकली शो नहीं करता। जिस प्रकार से जो कोई पवित्र स्त्री होती है वो अपने जो गोपनीय अंगों को हमेशा ढके रहती है, सर जो है ढकेगी, अपना जो शरीर है अच्छे से ढके रहती है, वो कभी भी जो है समाज में अपने अंगों का प्रदर्शन नहीं करती, विशेष रूप से अपने गोपनीय अंगों का कभी प्रदर्शन नहीं करती, जो पवित्र स्त्री है, जो कि जिसमें पवित्रता है, शुद्धता है उसमें। उसी तरह से जो वास्तव में भगवान का शुद्ध भक्त है, उनकी उसके जो ये गोपनीय भाव है वो कभी भी जो है पब्लिक में नहीं दिखाता इस तरह से, ताकि जो है यश अर्जन कर लूं, दिखाऊं कि देखो मैं कितना ऊंचा भक्त हूं मैं। तो वास्तव में ये भक्ति का भाव नहीं है, ये कपट का भाव है, ये कपट का भाव है। ऐसे गोल कृष्ण बाबा जी महाराज का एक और शिष्य था, उन्होंने कहा बाबा जी महाराज मेरे को ना संस्कृत सीखने के लिए जाना है। तो बाबा जी महाराज ने कहा हाँ तुम संस्कृत सीखना चाहते हो ना, तुम इसलिए संस्कृत सीखना चाहते हो ताकि तुम जो है भागवतम के ऊपर बहुत ही संस्कृत में बड़ी ही अलंकारिक जो उसके ऊपर टिप्पणियां वो दे सको, फिर सब तुम्हारे लिए जो है तालियां बजाएं और तुमको जो है दक्षिणा दें, तुम्हारे सब शिष्य बने, इसलिए सीखना चाहते हो ना तुम संस्कृत। और वास्तव में शिष्य का यही मंशा थी कि आगे जाके जो है वो इस तरह से दिखाएगा, देखो मैं भागवतम में हम कितने निपुण हैं। तो जो है जब उसने ये सुना तो उसने कहा कि नहीं नहीं अरे अरे ऐसा कुछ नहीं है बाबूजी महाराज, अरे नहीं नहीं मैं तो बस ऐसी भागवतम सीखने के लिए जो है मैं संस्कृत सीखने के लिए जा रहा था। तो बाबूजी महाराज ने कुछ नहीं कहा उसे, बाबूजी महाराज चले गए वहां से, गौर कृष्णदास बाबूजी महाराज। तो वास्तव में जो है उसने संस्कृत सीखना शुरू कर दिया उसने, लेकिन क्योंकि जो गुरु की आज्ञा थी उसका पालन उसने किया नहीं, तो बाद में जो है ये सबको फिर पता लगा कि भले ही वो गौर कृष्णदास बाबा जी महाराज का शिष्य था लेकिन गुरु की आज्ञा की अवज्ञा करने के कारण उसके साथ ऐसा हुआ कि उसका जो है अवैध कार्यों में लग गया वो। तो इस प्रकार से जो है जो दंभ होता है जब जो है शिष्य जो है गुरु से को देखता है कि भाई मैं जो है कुछ अलग कर लूं ना तो मैं जो है ज्यादा विख्यात हो जाऊंगा, ज्यादा प्रचलित हो जाऊंगा, तो ये दंभ है वास्तव में जो कि उस हृदय में बैठा हुआ है। ऐसे कि एक बार एक शिष्य जब ने गुरु से मिलने के लिए गया, कई बार लोग जाते हैं ना अरे महाराज जी आपके दर्शन करने के लिए आए थे, गुरु महाराज जी आपके दर्शन करने के लिए आए थे, तो गुरु ने कहा यू आर इन माया, तुम माया में हो। नहीं गुरु महाराज मैं माया में नहीं हूं। गुरु ने कहा तुम माया में हो, तुम चार नियम का पालन नहीं कर रहे ना, तुम नियम तोड़ रहे हो ना। नहीं गुरु महाराज, लेकिन गुरु के सामने जो है उसने कहा कि गुरु को लगता पता लग गया है, किसी ने लगता बता दिया होगा इन्हें, यहाँ पता नहीं किस तरह से पता लग गया इन्हें। उसने कहा हाँ गुरु महाराज एक नियम टूट रहा है, बाकी नियम करता हूं मैं, एक नियम टूट रहा है बस। तो उसका वास्तव में इलिसिट सेक्स का जो था उसका नियम टूट रहा था। तो कहते हैं महाराज जी एक नियम है वो ना जो नो गैम्बलिंग वाला है ना वो टूट जाता है बस, वो लॉटरी की पुरानी आदत थी ना इसलिए, वैसे बाकी तो सब सही चल रहा है। गुरु ने कहा कितना दंभ भरा है तुम्हारे अंदर, आहार निद्रा भय मैथुन। तो वास्तव में इनको पार करना इसी सीक्वेंस में होता है, जब आहार जो है आहार ही किसी को बहुत ज्यादा इच्छा है लेकिन बहुत नींद आ रही है उसे, आहार निद्रा, निद्रा ऊपर है तो कहेगा बाद में खा लूंगा मेरे को बड़ी नींद आ रही है, लेकिन किसको बड़ी निद्रा भी आ रही हो लेकिन अगर वो भय भी भयावह सिचुएशन में है अगर वो, तो निद्रा और भूख दोनों मर जाएंगे उसके, है ना, क्योंकि भय ऊपर है और उसकी ओर मैथुन अमचा। तो वास्तव में जो है गुरु ने देख लिया था वास्तव में इलिसिट सेक्स नाम का जो जो रेगुलेटरी प्रिंसिपल है ये उसका पालन नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसके अंदर दंभ था। तो गुरु ने कहा तुम जानते हो माया में इसलिए नहीं हो कि तुम नियम तोड़ रहे हो, तुम जो है माया में इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा जो संबंध है गुरु के साथ वो कपट से भरा हुआ है, तो तुम इसलिए माया में हो। तो जो व्यक्ति वास्तव में गुरु से झूठ बोल सकता है वो संसार का कोई भी बुरा काम कर सकता है। तो ये समझाया उसे, तो वास्तव में ये दंभ है, इसलिए कई भी क्योंकि अब गुरु से जो चीज नहीं जुड़ने दे रही हमें वो दंभ है वास्तव हमारा। ये भगवान कृपा, भगवान की जो है कृपा का रूप है जो गुरु है, इसे कहते हैं हिज डिवाइन ग्रेस, हिज डिवाइन ग्रेस श्रील प्रभुपाद, या कृष्ण कृपा मूर्ति, कृष्ण की कृपा की मूर्ति है गुरुजन। तो कृपा के साथ ही जुड़ने में जो है ये अवरोध उत्पन्न करने वाला है, ये कपट वास्तव में। भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं ऐसे कि नाके तिला गले कंठी वाला आई तो कलीर चेला, इसने गले में देखो कंठी वाला ही पहनी है इसने, नाक में तिलक भी लगाया इसने, लेकिन हृदय से ये तो कलयुग का चेला है, ये हमने गुरु का चेला नहीं बना, ये तो कलयुग का चेला है। यही तो कलीर चेला, ये तो कली का चेला है, ये तो क्यों कली का चेला है, क्योंकि दंभ भरा है उसके अंदर, अभी कपट भरा है उसके अंदर। कई बार शिष्य भी होते हैं वो गुरु के पास जाते भी हैं, जय गुरुदेव, ओ जय गुरुदेव, दंड प्रणाम गुरुदेव, जय 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 जय, लेकिन जब गुरु से जब दूर होते हैं तो वास्तव में वो नियम भी तोड़ते हैं, माला तो घसीटा मार माला होती है, लेकिन गुरु कहा गया अरे महाराज जी बस आपकी कृपा से सब चल रहा है, आप महान हैं, बस हम आपके दास हैं। लेकिन वास्तव में वो भाव हृदय से नहीं होता, वो सिर्फ जुबान से होता है, क्योंकि उसमें कपट भरा है उसके अंदर। या फिर कोई जो है जब सोचता है कि अरे दीक्षा ले लेते हैं, अरे क्या हो गया, अरे इतने सारे लोगों ने दीक्षा लिया, हम भी गंगी जो बहती गंगा है उसमें हाथ धो लेते हैं, अरे हमारा नाम भी लिख दो जी दीक्षा में, अरे उसमें क्या हो गया, हम भी बैठ जाएंगे दीक्षा में। तो ये कपट है वास्तव में, गुरु के साथ जुड़ने में भी कपट। तो इसलिए जो है बड़ा सजग रहना चाहिए जो गुरु के साथ, और विशेष रूप से उनके ऊपर ही बड़ा जिम्मेदारी होती है जो कि गुरु के साथ जोड़ते हैं। उनके कंधे भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि सिर जो है अपने अपना ग्रुप बड़ा करने के लिए जो है भेड़ बकरी की तरह सबकी दीक्षा नहीं होनी चाहिए। दीक्षा जो है बड़ा गंभीर विषय है कि वहां से जब शिष्य कहता है कि इस व्यक्ति के लिए मैं जी सकता हूं, इसी व्यक्ति के लिए मैं मर सकता हूं, जब इस प्रकार की कन्विक्शन होती है उसमें, तो वहां से वो दीक्षा के लिए तैयार है। तो सिर्फ जो है अपना ग्रुप बड़ा करने के लिए, या फिर कोई चाहे जी हम भी जी बहती नदी में हाथ धो लेते हैं, हम भी दीक्षा ले लेते हैं जी, है दीक्षा इज नॉट जस्ट अबाउट थ्रोइंग अ बनाना इन द फायर सेक्रीफाइस। केले फेंकने से जो है अग्नि में दीक्षा नहीं होती, दीक्षा का मतलब है संबंध होना गुरु के साथ। लेकिन दंभ होता है तो संबंध के ऊपर ध्यान नहीं देता शिष्य, क्योंकि उसके कुछ और मोटिव्स हैं, अभी उसने वो कुछ और सोच के आया है, भक्तों के समाज में भक्ति करने के लिए नहीं आया, कुछ और उसका मंशा है अभी। तो इस प्रकार का जो दंभी शिष्य होते हैं उनकी भी जो है उनकी कई कैटेगरीज हैं। जैसे कि कुछ जो दंभी शिष्य होते हैं, जो कपटी शिष्य होते हैं, एक होते हैं जो कि वास्तव में मक्खी की तरह होते हैं, बहुत भिन्न बनाते हैं, जैसे होती है ना एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है मक्खी, लेकिन ना वो एक फूल पे फोकस नहीं रहती वो। उसी तरह से गुरु के द्वारा जो आदेश आते हैं ना, तो ऐसे शिष्य ना कभी भी गुरु के आदेश के ऊपर ध्यान लगा ही नहीं पाता। अरे वो बोल दिया, अरे मुंह से निकल गया वो गलती से बातचीत करते हुए। वो महाराज जी ना बहुत, हमारे गुरु जी है ना, उनको बात करने बातचीत करने बड़ा शौक है, वो बोल दिया उन्होंने वैसी। तो कभी भी जो है ऐसा कपटी शिष्य वो कभी गुरु के आगे पालन नहीं कर पाता। दूसरी प्रकार का कपटी शिष्य कैसा होता है, वो तीर के समान होता है। वो क्या करता है, वहां से बताता है, अरे देखिए गुरु महाराज जी आपको पता नहीं है, देखिए आपको प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपको किताबी ज्ञान है, हमको पता है ज्यादा, गुरु महाराज मैं आपसे ज्यादा जानता हूं, आपको जो है पूर्ण ज्ञान नहीं है, मेरे को पूर्ण ज्ञान है, मैं बताता हूं आपको क्या सही है, देखो इसको ना महाराज जी इसको ना ऐसे करना चाहिए, गुरु जी हाँ इसको ना ऐसे करना चाहिए, आप इस बात को नहीं समझते हैं, मैं बता रहा हूं इस प्रकार कर देंगे तो ये देखना ये प्रोजेक्ट ऐसे फलेगा फूलेगा। गुरु कह रहे नहीं बेटा ऐसे करोगे ना ये जो है प्रभुपाद जी की सोसाइटी के लिए बड़ा अच्छा है, इससे जो है ऐसा करेंगे अच्छा रहेगा। महाराज जी मैं जानता हूं, मैं बेटर जानता हूं आपसे, ऐसा करना चाहिए। तो ऐसा व्यक्ति जो है वास्तव में तीर के समान होता है, जो कि गुरु के हृदय में जो है कष्ट पहुंचाता है। तीसरी प्रकार का दंभी होता है जो कि वास्तव में समझता है गुरु ने बोला ना तो उनकी वाणी में इतनी शक्ति नहीं है, कोई और चीज है जो कि जिससे शक्ति मिलेगी। अरे गुरु ने कहा भाई वहां जाके प्रचार करो, तो ये शिष्य पहुंच जाएगा ज्योतिष के पास, यानी मेरे तो ये जन्म कुंडली मेरी बताई कि मैं प्रचार करने जाऊं गुरु की आगे दी है तो शुभ समय कौन सा है, क्योंकि उसको ये विश्वास नहीं है कि गुरु ने जो बोला है तो उनकी वाणी में उनके आदेश के साथ वो शक्ति भी है, तो ये उसको अभी विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार का व्यक्ति ये जो है तीसरे प्रकार का शिष्य है, दंभी शिष्य। चौथी प्रकार का होता है जो कि खंभे की तरह होता है, उसको जो है गुरु आदेश सुनाते वो सुनता रहता है, सुनता रहेगा वो, नहीं कुछ करेगा नहीं, खंभे को अगर जो है कुछ सुनाते रहो, अफकोर्स यहां खंभे की बात हो रही है कि यहां खंभे भी जो है बलराम जी का एक्सपेंशन है, लेकिन वैसे अगर खंभे की बात करें तो खंभा जो है क्या होता है, वो खड़ा रहता है, वो उसको आप प्रवचन सुना लो वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा एज इट इज। तो ऐसा दंभी शिष्य होता है वो भी यहां खड़ा रहता है, वो सुनता रहता है, हाँ अरे बड़ी अच्छी बात बोली, अरे जय गुरु महाराज, अरे बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अरे हाँ, नहीं कुछ करता नहीं है वो। और एक होता है जो कि वास्तव में दोष निकालता है, गुरु की हर बात को काटता है वास्तव में, उसमें दोष ही देखता है, पता नहीं ये क्यों दे दिया वाला आदेश, अब भाई अब समय बदल रहा है, अब मेट्रोपॉलिटन सिटी में कुछ और हाल चाल है, पता ही नहीं इनको है। तो गुरु की वाणी में दोष देखता है वो, ये पांचवी तरह का है दंभी शिष्य। और पांचवी और सबसे आखिर में होता है जो कि किसी और को दे देता है, गुरु ने बोला कि बेटा तुम जो है देखो शिष्य तुम जो है जाके ना ये सेवा करो, अरे हाँ जी बिल्कुल जी जैसी आ गया जैसी आ गया जी जैसी आ गया, और जाएगा बोलेगा अरे प्रभु आप बड़े अच्छी सेवा करते हो, पता नहीं मेरे को कुछ सेवा दे दी ये वाली, आप बड़े एक्सपर्ट हो सेवा में, आप ना ये वाली सेवा कर लो। अरे महाराज जी ने बोला भाई करनी है। तो जो है जो गुरु ने आज्ञा दी है जो सेवाएं दी है उनको क्या करता है डेलीगेट कर देता है किसी और को, जो कि वो खुद कर सकता है, हालांकि खुद ना कर सके तो डेलीगेट करे तो बात और है, किसी और को दे, लेकिन किसी और को देता है कि भाई आज छुटकारा मिले भाई, ये कौन करेगा ये सब, मेरे पास अपने बहुत सारे काम है भाई। तो ये जो है दम्भी शिष्य का हाल होता है। तो भक्तिवेद ठाकुर जो डेफिनेशन देते हैं कि हु इज अ वैष्णव, तो भक्तिवेद ठाकुर कहते हैं द वन हु इज फ्री फ्रॉम डुप्लिसिटी एंड हु रेलिशेस द इटर्नल पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा ही इज अ वैष्णव। तो पहली क्वालिफिकेशन बताया दैट ही इज फ्री फ्रॉम डुप्लिसिटी, वो दम्भ और कपट से मुक्त है वो, तो वो वास्तव में शिष्य है। तो दम्भ से निकलना इसलिए भक्तों के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। श्री भक्ति सरस्वती ठाकुर कहा करते थे, मैंने कहा दैट वी आर नॉट पायस पीपल नॉर आर वी इम्पायस पीपल नॉर आर वी मेंटल स्पेक्युलेटर्स, वी आर सिंपली शू कैरियर्स ऑफ द नॉन डुप्लिशियस डिवोटीज ऑफ लॉर्ड हरि हु आर इनिशिएटेड इनटू द मंत्रा कीर्तनिया सदा हरि। कि हम ना तो पुण्यात्माएं हैं, ना हम पापात्माएं हैं, ना ही हम मनोधर्मी हैं, हम तो सिर्फ भगवान श्री हरे के निष्कपट शुद्ध भक्तों की चरण पादुकाओं को शीश पर धारण करने वाले सेवक हैं, वो दास हैं जिनकी दीक्षा हुई है एक ही मंत्र में कीर्तनिया सदा हरि। तो वास्तव में जो निष्कपट भक्त हैं, जब तक हम उनके चरणों की सेवा नहीं करेंगे, जब तक हम उनका जो है उनकी उनके आदेशों का पालन नहीं करेंगे, तब तक जो है इस दम्भ से इस कपट से जो कि हृदय में चिपका हुआ है इसे नहीं निकल सकते। इसको जो है हमारे आचार्य कहते हैं इट इज अ स्टबर्न इग्नोरेंस, ये जिद्दी अज्ञानता है। एक तो अज्ञानता होती है ना जो सिर चिपकी होती है तो भाई थोड़ा झाड़ दिया कुछ मार दिया तो अज्ञानता टूट के हट गई चेतना से। एक है वो होती है स्टबर्न इग्नोरेंस, जिद्दी अज्ञानता, वो चिपक गई है। तो ये दम्भ और कपट की जो ये जो ये अज्ञानता है ये जो है चेतना में चिपट गई है, हाथ से चिपक गई है ये। लेकिन इसको निकालना होगा हमें वैष्णवों की सेवा करके, वैष्णव के प्रति प्रेम भाव रखे। यदि भक्तों के समाज में एक भी ऐसा वैष्णव है जिसको देख के हम प्रसन्न नहीं होते, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी नाम में रुचि नहीं आ सकती। अगर एक भी ऐसा व्यक्ति है जिसको देख के हम अरे यार इसका मुंह क्यों देख लिया मैंने, एक भी ऐसा भक्त है अगर भक्तों के समाज में जिसको देख के जो है हमारा मन कड़वा होता है, तो हरि नाम में रुचि नहीं आएगी कभी ऐसे व्यक्ति की, और चाहे वो किसी भी वजह से हो। कोई सोचे अरे ये तो नॉर्थ इंडियन वैष्णव है, हम तो साउथ इंडियन वैष्णव, अरे ये तो पढ़े लिखे वैष्णव नहीं, हम पढ़े लिखे वैष्णव, अरे ये तो अंग्रेज वैष्णव है, हम हिंदुस्तानी वैष्णव, अरे ये तो उस गुरु के शिष्य वाले वैष्णव है, ये हमारे वाले थोड़ी है। तो वास्तव में इस व्यक्ति की अभी दृष्टि ही विकसित नहीं हुई कि वो वैष्णवों को देख सके। तो क्योंकि उसकी दृष्टि ही विकसित नहीं हुई कि वो वैष्णव को देख सके, तो वैष्णवों की कृपा भी नहीं ले पाता इससे वो। तो वास्तव में भक्तों के समाज में एक भी ऐसा वैष्णव नहीं होना चाहिए जिसको देख के हमारे मन में खट्टास आए। ऐसे बाबा एक भक्त मुझे कह रहा था, कह रहा प्रभु मैं उसको देखता ना, उससे तो मेरा 36 का आंकड़ा है। भक्तों के साथ 36 का आंकड़ा रखा हमने, कमाल हो गया। तो ये भक्त ही है वास्तव में, इनकी कृपा से ही तो हम भक्ति कर पा रहे हैं भाई, अपने दम पे हम भक्ति करने वाले हैं कुछ। दो घंटा तो हमसे बैठा नहीं जाता कि हम जप कर रहे हैं, क्या तपस्या है, क्या शुद्धता, क्या पवित्रता, कुछ नहीं। यानी कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं मुझसे चला नहीं जा रहा, मैं सिर्फ इस छड़ी के दम पे ही चल पा रहा हूं, ये छड़ी है वैष्णव की कृपा, नहीं तो मेरा सारा शरीर शिथिल है मैं चल नहीं सकता, लेकिन ये जो छड़ी है वैष्णव की कृपा की छड़ी, मैं सिर्फ इसके ही दम पर इसी के बलबूते पे मैं चल पा रहा हूं। तो वास्तव में कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमें बता रहे हैं कि ये वैष्णव समाज, इसमें एक एक वैष्णव की कृपा मेरे लिए महत्वपूर्ण है कृष्ण भक्ति में एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए, नहीं तो मैं एक इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए सरलता का जो है हमें प्रयास करना पड़ेगा, उसका अभ्यास हमें करना पड़ेगा। और सरलता का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल जो है प्रहलाद महाराज है। हिरण्यकश्यपु ने पूछा कि क्या तुम्हारे भगवान सब और हैं, और प्रहलाद महाराज ने कहा हाँ सब और हैं। अब वो ऐसा नहीं बोल रहे कि भाई कोई फिलोसॉफिकली आंसर कर रहे हैं, एक्चुअली प्रहलाद महाराज भगवान को सब और देख रहे थे। पता नहीं मेरे पिताजी ऐसे सवाल क्यों पूछ रहे हैं, सब और तो है। वो कुछ ऐसा ही कोई पूछे क्या तुम्हारे बगल में खंबा है, हाँ अरे क्या खंबा है, तो सही इतना खंबा है। तो उसी प्रकार से प्रहलाद महाराज कह रहे पता नहीं क्यों मजाक कर रहे हैं, क्या हो गया इनको, पूछ रहे हैं क्या तुम्हारे भगवान सब और, हाँ सब और तो है। तो ये क्या सरलता है वास्तव में, सरलता ही वैष्णवता। तो कपट क्या करता है, हमारी चेतना को ना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना देता है, और जितना ज्यादा जिसकी चेतना कॉम्प्लिकेटेड है ना, उसका भक्ति में बढ़ना उतना ही कठिन है, बहुत कठिन है उसके लिए, बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा उसे, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। तो वास्तव में सरलता लाए, सरलता लानी है हमें अपने जीवन में। जितने ज्यादा सरल विचार होंगे, सरल हृदय होगा, सरल जो है हमारे मनोभाव होंगे, उतना हमारे लिए आसान है भक्ति के पथ में आगे बढ़ना। और उसके लिए हमें वही करना है जो कि भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा, दैट वी हैव टू बिकम शू कैरियर्स ऑफ द नॉन डुप्लीशियस डिवोटीज ऑफ लॉर्ड हरि हु आर इनिशिएटेड इनटू द मंत्र कीर्तनीय सदा हरि। तो निष्कपट भक्तों की जो चरण पादुकाओं को शीश पे धारण करना है हमें। तो जब तक हम भक्तों के समाज में विनम्रतापूर्वक नहीं रहेंगे, आपस में एकजुट होकर नहीं रहेंगे, तो वास्तव में हम कभी नहीं आगे बढ़ सकते, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। और माया जानती है कि अगर ये लोग एक साथ रहे तो ये मेरा बैंड बजा देंगे। कलयुग भी जानता है अगर ये सब भक्त एक साथ रहे तो ये लोग मेरी ऐसी की तैसी कर देंगे, क्योंकि ये लोग गौड़ीय वैष्णव है, हाँ इनके पास जो है आचार्यों की कृपा है, इसलिए सबसे बेहतर है इनको तोड़ा जाए, इनको अलग अलग किया जाए, फिर इनके बीच में मैं घुसूंगी मैं। हाँ माया यही सोचती है। जिस तरह से मटके में जो दरार होती है ना, पानी उसी से रिसता है, तो पानी देखता है दरार यहां यहीं से रिसना है, तो माया भी जो है वो देख रही है कि दरार जो है डालनी पड़ेगी, उस दरार से अंदर घुसूंगी मैं। तो भक्तों के समाज में इसलिए एकता होना, आपस में प्रेम होना बहुत बहुत आवश्यक है, चाहे कोई भी कारण हो। वी शुड ऑलवेज रिमेन यूनाइटेड, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, श्री प्रभुपाद कहा करते थे। सो दैट्स व्हाई वी शुड ऑल रिमेन यूनाइटेड एंड फाइट विद दिस डुप्लिसिटी, ये जो बकासुर हमारे अंदर जो बैठा हुआ है, जो कितना शक्तिशाली है, ये किसी प्रकार के दंड से मरता नहीं, चाहे वो शिवजी का त्रिशूल हो, चाहे वो दंड हो, ब्रह्म दंड हो, या यम दंड हो, प्रभाव नहीं है इसके ऊपर। तो इस कपट से निकलना बहुत बहुत आवश्यक है। तो ये कृष्ण जन्माष्टमी जो आ रही है वास्तव में हमारे लिए, तो ये हमारे लिए एक तरह का, हमारे लिए एक दृढ़, हमें विश्वास लाना है अपने अंदर, एक दृढ़ संकल्प लाना है, एक क्रांति लानी है अपने जीवन में कि इस बकासुर को मारना है मुझे, इस बकासुर को मारना है। तो इस प्रकार से तब जो है हम शुद्ध भक्ति के धरातल पर जाएंगे, जो कि बहुत दुर्लभ है। इन स्पिरिचुअल लाइफ इजी गोइंग मीन्स नो गोइंग। श्रीमद् भागवत में भी एक श्लोक आता है, वेयर इट इज मेंशन द एडवांसमेंट ऑफ अ डिवोटी डिपेंड्स ऑन हाउ मच पेन स्टेकिंग ही इज इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो वास्तव में कृष्ण के लिए हम कितने कष्ट लेते हैं, भक्तों के से हम, हमारा स्नेह जो है कितना है, ये ही डिसाइड करेगा हमारा शुद्ध भक्ति में आगे बढ़ना, नहीं तो हम बढ़ ही नहीं सकते, सिर्फ ड्रामे चलते रहेंगे, सिर्फ सुकृतियां इकट्ठी करते रहेंगे, कब तक सुकृति इकट्ठी करेंगे, बहुत लंबा सफर है। तो उसके लिए जो है बड़ी गंभीरता चाहिए, बड़ी सजगता चाहिए हमें, और सरलता चाहिए हृदय में, और वैष्णव समाज में जो है स्नेह, एक दूसरे के प्रति प्रेम, एक दूसरे एकजुटता होनी बहुत बहुत आवश्यक है। हमारी जो है अगर प्रीचिंग के रिजल्ट इतने सफलता हमें मिलनी है अगर, तो आपस में टूट के, तो हमें सफलता नहीं चाहिए। अगर आपस में एकजुट के रह के हमें इतनी सफलता मिलती है, हम इस इतनी सफलता में खुश रहेंगे, बिकॉज इंटेग्रिटी ऑफ द वैष्णव कम्युनिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो मोर देन प्रोजेक्ट्स आर पीपल, क्योंकि जब सब साथ में रहेंगे तो सफलताएं अपने आप आएंगी, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने आप सफल होंगे जब भक्त एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, तो इस बकासुर को मार सकेंगे। तुम्हारे अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स और हमारे बाहर के चैलेंजेस, इन सब के ऊपर जो है विजय प्राप्त करेगा भक्त जब वास्तव में जो है भक्तों के समाज में प्रेम पूर्वक, स्नेह पूर्वक, सेवा भाव के साथ, विनम्रता के साथ, सरल हृदय होकर जब हम सेवा करेंगे, हरि नाम की शरण लेंगे, श्रवण कीर्तन, कृष्ण कथा, तव कथामृतम तप्त जीवनम, दिस कृष्णास पास टाइम्स आर लाइफ गिविंग एलिक्सिर, ये अमृत है वास्तव में। तो इसके लिए जो है हमें चाहिए कि वास्तव में हम अपने जीवन में गंभीरता लाएं, और एक कपट रूपी है जो बकासुर अंदर बैठ गया है, जम गया है, जो बड़ी मुश्किल से निकलता है, इसको निकालने के लिए पूरा जोर लगाएं, क्योंकि हमें महाप्रभु की कृपा चाहिए हमें। यदि हम कपटी रहे तो कपट पावन नहीं है महाप्रभु, ये याद रखना है हमें। पतित होंगे, महापतित होंगे, महाप्रभु बचा लेंगे हमें, लेकिन इस कपट से इसको निकालना है हमें जो हृदय में चिपका हुआ है। ठीक है, मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का प्रश्न हो एक दो हम ले सकते हैं। यस प्रभु जी,
प्रभुपाद जी ने एक शायद रामेश्वर को लेटर लिखा था, उसमें कहते कि पुस्तक वितरण ये हमारी सोसाइटी का बोन है, रीढ़ की हड्डी है, और यदि सुविध अच्छे ढंग से चलता रहे तो मंदिर के हर कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से चलते।
बिल्कुल,
तो मैं आपकी गलती नहीं निकाल रहा, लेकिन एक ऐड कर रहा हूँ, क्षमा कीजिए।
नहीं नहीं, हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा यहाँ एक पॉइंट रखा है कि श्री प्रभुपाद ने कहा कि यदि ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता ना तो हमारे जो है मंदिर के सारे कार्यकलाप होते रहेंगे। प्रभुपाद जी एक बार वृंदावन टेम्पल के बाहर निकल रहे तो एक भक्त था, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहा था। तो श्री प्रभुपाद ने कहा, ये तुम क्या करने जा रहे हो? उसने कहा, श्री प्रभुपाद मैं बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहा हूं। प्रभुपाद जी ने उसमें एक बुक निकाली, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। प्रभुपाद जी ने कहा, इसके अंदर क्या लिखा है? अरे प्रभुपाद, मुझको पता नहीं। प्रभुपाद ने कहा, ये पुस्तकें वितरित करने के लिए हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कि भक्त पढ़े इन्हें। अगर भक्त पढ़ेंगे नहीं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने जाएंगे, तो भला क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। प्रभुपाद जी का एक और कोट है, श्री प्रभुपाद कहते हैं, इफ डिवोटीज आर चैंटिंग हरे कृष्णा नाइसली, देन आवर मैन विल बी स्ट्रांग। वेन दे विल बी स्ट्रांग, दे कैन डिस्ट्रीब्यूट आवर बुक्स प्रोफ्यूसली। ये प्रभुपाद जी का एक कोट है। तो यदि कोई सेल्समैन भी होता है, उसकी सफलता तभी होती है जो वो जानता है उसका प्रोडक्ट कितना बढ़िया है। तो बताएगा ना, देखिए जी, हम मिक्सर ग्राइंडर लेके आए हैं, इसके अंदर ये फीचर है, ये फीचर है, इसके अंदर 10 प्रकार के ब्लेड देते हैं, एक साल की वारंटी है इसके साथ। तो जानता उस फीचर के बारे में। तो इसलिए हम जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाएं, लेकिन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए शक्ति कहां से आएगी? इट इज नॉट सेल्समैनशिप, इट इज नॉट सेल्समैनशिप। एक बार जो है भक्तों ने बहुत ही अच्छे तरीके से बुक्स को सजाया था कि बड़ी बुक्स निकलेंगी, कोई बुक नहीं निकली। प्रभुपाद जी ने कहा, द बुक्स आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड बिकॉज हाउ एलोबरेटली दे आर बिंग शो टू पीपल, माई बुक्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड बाय एंथुजियाज्म ऑफ माई डिवोटीज। नाउ ये एंथुजियाज्म कहां से आता है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का? ये आता हमारी साधना से, हमारी साधना से आता है। कोई सोचे मैं डकार लेने मेरे को, लेकिन आंख कुछ खाए ना वो, क्योंकि मैं चाहता हूं अल्फांसो मैंगो का डकार आए मेरे को, लेकिन अल्फांसो मैंगो खाऊंगा नहीं मैं, डगा रहेगा उसको अल्फांसो मैंगो का। उसी प्रकार से बुक डिस्ट्रीब्यूशन की सफलता भी इसी में निर्भर करती है कि हम प्रभुपाद जी की जो ग्रंथ है वो कितने अच्छे से पढ़ते हैं। तो प्रभुपाद जी ने बुक्स लिखी है ऑफ कोर्स, बट दे आर प्राइमरीली फॉर डिवोटीज। जब भक्त पढ़ेंगे तो उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उन्हें बताएंगे कि आप भी पढ़ो, हम भी पढ़ते हैं। ऐसे एक भक्त था, वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहा था। प्रभुपाद से बोलता, प्रभुपाद व्हाट आई वांट टू डू इज टू डिस्ट्रीब्यूट दीज बुक्स थ्रू आउट माई लाइफ। मैं बस चाहता हूं कि जीवन भर मैं इन पुस्तकों का वितरण करूं। प्रभुपाद जी ने कहा, बट यू शुड ऑल्सो डिजायर टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड। तुम्हें यह भी इच्छा होनी चाहिए कि तुम जो है भगवत धाम वापस जाओ। तो सेवाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेवा करने का भाव किससे आएगा? साधना से आएगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने प्रियोरिटी की सीक्वेंस दी है। प्रभुपाद जी ने कहा, मोस्ट इंपॉर्टेंट हेल्थ, हेल्थ के बाद साधना, साधना के बाद सेवा या प्रचार की जो सेवा, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, वट एवर जो हम सेवा कर रहे हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो जो सेवा से इंपॉर्टेंट बताया श्री प्रभुपाद ने, साधना। वास्तव में और साधना में ही आता है कि हम हरिनाम का, हरिनाम को ठीक से लें, है ना, भक्तों के साथ जो है स्नेहपूर्वक संबंध बनाए। तो जब वेन दिस विल बी हेल्दी कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन देर विल बी सो मच डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स। प्रभुपाद जी के टाइम में 50 लाख बुक्स डिस्ट्रीब्यूट होती थी, आज हम लोग 10 लाख 12 लाख करते हैं। हाँ, प्रभुपाद जी के टाइम में 50 लाख क्यों होती थी? दे वाज कॉन्सेंट्रेटेड कृष्ण कॉन्शियसनेस। भक्त जो थे हमेशा नगर कीर्तन, हमेशा चैंटिंग हरे कृष्णा, फुल फ्लेज कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो अगर कृष्ण भावना भावित ही नहीं अगर हम होंगे तो क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे? क्योंकि वास्तव में ये बुक डिस्ट्रीब्यूटर की पवित्रता है जो व्यक्ति को सामने पिघला देती है। कोई सेल्समैनशिप तो है नहीं, ओह दे हैव हैव गॉट सच अ नाइस बुक, दे आर इन इंग्लिश, दैट्स सो वंडरफुल, दे हैव बीन टॉट मी इन वेस्ट न्यूज़, प्लीज टेक इट सर, इससे बुक होगी क्या? स्किल्स आर इंपॉर्टेंट, बट मोर इंपॉर्टेंट देन स्किल्स इज द कॉन्शियसनेस ऑफ द बुक डिस्ट्रीब्यूटर। तो ऑफकोर्स प्रभुपाद जी ने कहा, हमारे सारे कार्य चलेंगे मंदिर के, कार्य के मंदिर यानी कि बाकी सेवा अच्छे चलेंगे, क्योंकि क्या होगा, लोग भक्ति बनेंगे, लक्ष्मी भी आएगी, इस तरह मंदिर के कार्य चलेंगे। लेकिन मंदिर के कार्य सिर्फ लक्ष्मी से नहीं चलते हैं. ऑफकोर्स प्रभुपाद ने बोला दैट लक्ष्मी इज द ब्लड ऑफ इस्कॉन, कि भाई जो सारे कार्य चलेंगे वो जो लक्ष्मी से चलेंगे. लेकिन जो खून भी अगर दौड़ता है ना शरीर में, तो पंप होता है ना हृदय पंप, अगर हृदय ना हो तो क्या दौड़ेगा खून, है ना. सो द हार्ट इन द बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसी तरह से वास्तव में जब तक हमारा कृष्ण भक्ति में हमारा हृदय नहीं धड़केगा, तो वास्तव में जो है सफलताएं जो है वो इतनी महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, है ना. क्योंकि हम लोग ऑफकोर्स वी आर मिशनरी, लेकिन मिशनरी हम लोग तभी सफल होंगे जब मिशनरी लोग जिंदा रहेंगे ना. अगर हम खुद ही भक्ति में मर गए, हाँ ढीले ढाले हो गए, टूट फूट गए, चितर बितर हो गए, क्या प्रचार करेंगे हम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू टेक द साधना अल्फांसो मैंगो, देन देयर विल बी बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज द बेल्चिंग प्रोफ्यूज बुक डिस्ट्रीब्यूशन. तो हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन है ना, होता है सेल्समैनशिप के कारण नहीं, हमारा बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है भक्तों की साधना के कारण, उनकी शुद्धता के कारण, उनकी पवित्रता के कारण. इसे के बाद जो बहुत प्योर डिवोटीज होते हैं वो सिंपली बस जाके बोलते हैं हरे कृष्णा आप प्लीज ये बुक ले लीजिए, ये आपके लिए बड़ी कल्याणकारी रहेगी, और उस भक्त की पवित्रता जो है छूती है उस व्यक्ति के को, और वो बुक लेता है. सो इन टर्म्स ऑफ प्रीचिंग यस बुक डिस्ट्रीब्यूशन नो डाउट अबाउट दिस, लेकिन उसको करने की शक्ति क्षमता जो है वक्त में आती है साधना से. तो प्रीचिंग एस्पेक्ट में यस बुक डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर इंपॉर्टेंट, लेकिन उसको करने की क्षमता जो है वो साधना से ही आएगी, उसको करने का दम. ये हॉर्लिक्स खा के नहीं आता है दम कि हम जी आप बुक डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ग्लूकॉन डी पी लो बुक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इसका दम आएगा पवित्रता से, और पवित्रता आती है हमारी साधना से, कितना ध्यान पूर्वक हम जप करते हैं. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और किसी को कोई सवाल हो, टाइम अप. ओके, श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की जय, राय गोप प्रेमानंदे हरि हरि बोल.